उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोध डिजाइन के जो तीन तकनीकी उद्देश्य हैं उनमें से पहला तथा दूसरा उद्देश्य तीसरे उद्देश्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इन उद्देश्यों के अलावा शोध डिजाइन का एक उद्देश्य यह भी है कि वह स्पष्ट शोध परिणाम प्रदान कर सके तथा अस्त व्यस्तता को प्रयोग से दूर कर सके। अस्त व्यस्तता से तात्पर्य एक ऐसी प्रयोगात्मक अवस्था से होता है जिसमें दो या दो से अधिक चर वेरिएबल्स एक साथ परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह कहना मुश्किल हो जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन का कारण कौन सा विशेष चर वेरिएबल है। अस्पष्टता चरों में अस्त व्यस्तता कन्फाउंडिंग से प्रयोग के परिणाम में अस्पष्टता वॉल्यूनेस बढ़ती है तथा स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डीवी में कारण परिणाम संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की निश्चित व्याख्या नहीं हो पाती है। अतः एक शोध डिजाइन का उद्देश्य चरों में अस्त व्यस्तता कन्फाउंडिंग को दूर करना भी होता है। पैराग्राफ चेंज शोध डिजाइन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। मनोज्ञान शिक्षा तथा समाजशास्त्र में जितने भी शोध किए जाते हैं उन्हें दो प्रकारों में विभक्त किया गया है, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तथा अप्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध में जिन शोध डिजाइनों का प्रयोग होता है उन्हें प्रयोगात्मक शोध तथा अप्रयोगात्मक शोध में जिन शोध डिजाइनों का उपयोग होता है उन्हें अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन कहा जाता है। स्पष्ट हुआ है कि शोध डिजाइन के मुख्य दो विस्तृत प्रकार हैं, क अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन, ख प्रयोगात्मक शोध डिजाइन। इन दोनों प्रकार के डिजाइनों की आलोचनात्मक व्याख्या निम्नांकित है। शोध डिजाइन चाहे प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल हो या प्रयोगात्मक अप्रयोगात्मक हो, उसकी व्याख्या करने में शोध वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित संकेतों सिंबल्स का वर्णन किया है जिनका ज्ञान छात्रों को अपेक्षित है। ऐसे संकेत मूलतः निम्नांकित तीन हैं। आर, यह संकेत बतलाता है कि प्रयोज्यों का यादृच्छिक चयन रैंडम सिलेक्शन या प्रयोगात्मक अवस्थाओं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में उनका यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट किया गया है। एक्स, यह संकेत विवेचन ट्रीटमेंट या प्रयोगात्मक चर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल जिसमें जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया गया है उसे बतलाता है। जब कई विवेचनों की तुलना की जाती है तो उसे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री या एक्स एन से दिखलाया जाता है। ओ, यह संकेत प्रेक्षण या मापन या परीक्षण जिसका प्रयोग किया गया है को बतलाता है। जहाँ ओ की संख्या एक से अधिक होती है वहाँ ओ वन, ओ टू, ओ थ्री और ओ एन का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। जब किसी डिज़ाइन के एक ही कतार रो में एक्स तथा ओ दोनों ही लिखे गए हों तो इससे यह समझा जाता है कि ये दोनों ही एक व्यक्ति पर क्रियान्वयन किए गए हैं। यदि एक्स तथा ओ एक दूसरे की बाई या दाई दिशा में लिखे गए हों तो इससे कालिक क्रम टेम्पोरल ऑर्डर का पता चलता है, और जब एक्स तथा ओ एक दूसरे के ऊपर नीचे हों तो इससे यह पता चलता है कि ये दोनों समकालिक साइमल्टेनियस हैं। संकेतों के समानांतर कतार पैरेलल रो जब किसी टूटी फूटी रेखा डैश्ड लाइन से अलग किया गया हो तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रयोगात्मक समूहों को यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन द्वारा समीकृत इक्वेट नहीं किया जा गया है, परंतु यदि वे टूटी टूटी रेखा डैश्ड लाइन से अलग नहीं किए गए हों तो इससे पता चलता है कि प्रयोगात्मक समूहों को यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन तत्व द्वारा समीकृत इक्वेट किया गया है। क, अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन कई प्रकार के होते हैं परंतु उनकी एक सामान्य विशेषता यह है कि इस तरह के डिजाइन में प्रयोज्य सब्जेक्ट्स का न तो यादृच्छिक चयन रैंडम सिलेक्शन हो पाता है और न ही उनका विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाओं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट ही हो पाता है। अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन को मूलतः निम्नांकित प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक, प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन या मिथ्या प्रयोगात्मक डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सीडीयू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, दो प्रयोगकल्प डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तीन सहसंबंधात्मक डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन, चार वैषम्य डिजाइन, कॉन्ट्रास्ट डिजाइन, फाइव केस अध्ययन डिजाइन, केस स्टडी डिजाइन, सर्वे डिजाइन, सर्वे डिजाइन। इन सभी तरह के डिजाइनों की आलोचनात्मक व्याख्या निम्नांकित है। एक प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन या मिथ्या प्रयोगात्मक डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और स्यूडो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ब्रैकेट क्लोज। प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन वैसे डिजाइन को कहा जाता है जिसमें प्रयोगात्मक डिजाइन के तत्व कम से कम होते हैं परंतु अप्रयोगात्मक डिजाइन के तत्व अधिक से अधिक होते हैं। प्रयोगात्मक डिजाइन के प्रमुख तत्व है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ किया जाना, प्रयोज्य का यादृच्छिक चयन रैंडम सिलेक्शन तथा यादृच्छिक आवंटन एवं तुलना के लिए कम से कम एक प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा एक नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप ऑफ यादृच्छिकरण कंट्रोल ग्रुप को यादृच्छिकरण द्वारा तुल्य होना। प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन में प्रयोगात्मक डिजाइन के इन प्रमुख तत्वों की कमी पाई जाती है। किडर 1981 ने प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन को परिभाषित करते हुए कहा, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन वैसा डिजाइन होता है जिसमें यादृच्छिक आवंटन की कमी पाई जाती है तथा जिसके प्रयोगात्मक संकेतन में कुछ एक शून्य ही हो पाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जब कोई वैकल्पिक डिजाइन का प्रयोग संभव हो पाता है तो प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन का प्रयोग शोधकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि इस डिजाइन में यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट की कमी पाई जाती है। चूंकि प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में प्रयोगात्मक डिजाइन के तत्वों की कमी पाई जाती है इसलिए इसे मिथ्या प्रयोगात्मक डिजाइन, स्यूडो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या नॉन डिजाइन भी कहा जाता है। प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन निम्नांकित तीन प्रकार के होते हैं। ए वन शॉट केस स्टडी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस डिजाइन में प्रयोज्यों का एक समूह होता है जिसे एक खास विवेचन अर्थात एक्स दिया जाता है और बाद में एक्स के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रेशर ऑब्जर्वेशन या ओ किया जाता है। इस डिजाइन का सांकेतिक रूप से सिंबॉलिकली इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है, एक्स ओ। इस डिजाइन का एक सरल उदाहरण इस प्रकार होगा। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता इस प्राकल्पना हाइपोथीसिस की जांच करना चाहता है कि योगा करने से मानसिक शांति मेंटल सीरेनिटी बढ़ती है। इसके लिए वह शक्तियों का एक ऐसा समूह लेगा जो योग करते आ रहे हैं तथा फिर उन व्यक्तियों में मानसिक शांति के स्तर लेवल या मापन या प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इसमें योग करना एक्स है तथा मानसिक शांति का मापन ओ है। मान लिया जाए कि ऐसे व्यक्तियों को मानसिक शांति के स्तर का प्रेक्षण या मापन उनसे बातचीत करके किया जाता है। बातचीत के बाद मान लिया जाए कि यह पता लगता है कि योग करने वाले पुरुष एवं महिलाओं में मानसिक शांति का स्तर अधिक होता है। इस तथ्य के आधार पर शोधकर्ता क्या इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि योग करने से मानसिक शांति बढ़ती है? शायद नहीं। इसका कारण यह है कि इस डिज़ाइन में तुलना कंपैरिजन के लिए कोई नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप में नहीं लिया गया है। संभव है कि इन व्यक्तियों में योग आरंभ करने के पहले से ही मानसिक शांति का स्तर ऊंचा हो। इतना ही नहीं, इस तरह के डिज़ाइन की आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी कुछ कारकों जैसे चयन पूर्वाग्रह समकालीन इतिहास कंटेम्प्ररी हिस्ट्री तथा प्रयोगात्मक नश्वरता एक्सपेरिमेंटल मोर्टैलिटी जैसे कारकों से बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। इन कारकों की व्याख्या अध्याय 5 में की जा चुकी है। बी वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इन डिजाइन के संकेतन नोटेशन में पहले डिजाइन की अपेक्षा आंकड़ा बिंदु डाटा पॉइंट अर्थात O1 और बढ़ जाता है। इस डिजाइन का संकेतन इस प्रकार किया जाता है O1 x O2। स्पष्ट है कि इस डिजाइन में दिए गए विवेचन ट्रीटमेंट यानी एक्स के प्रभाव की तुलना विवेचन से पहले के प्रेक्षण 0-1 तथा विवेचन के बाद प्रेक्षण 0-2 के रूप में की जाती है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि शोधकर्ता अपने प्रयुक्त जो सब्जेक्ट में योग प्रारंभ करने के पहले मानसिक शांति के स्तर की माप कर लेता है O1 और फिर कुछ दिनों या महीनों तक योगाभ्यास करने X के बाद उन दोनों लोगों की मानसिक शांति की माप O2 करता है। और यदि बाद का प्राप्तांक स्कोर पहले के प्राप्तांक स्कोर से अधिक आता है तो शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि योगाभ्यास से मानसिक शांति बढ़ती है। परंतु क्या इस निष्कर्ष को वैलिड माना जा सकता है? शायद नहीं। इसका कारण यह है कि इस डिज़ाइन में चयन पूर्वाग्रह का कारक जो प्रयोग के डिज़ाइन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो नियंत्रित हो जाता है, परंतु अन्य कारक जैसे समकालिक इतिहास, परिपक्वता, परीक्षण, उपकरण आदि कारकों का प्रतिकूल प्रभाव डिज़ाइन की आंतरिक वैधता पर पड़ता ही रहता है। जैसे संभव है कि दूसरे बारी के प्रेक्षण O2 तक प्रयोज्य पहले से अधिक परिपक्व, मैच्योर्ड एवं सजग हो गया हो। दूसरी बारी की परीक्षण परिस्थिति पहली बारी की परीक्षण परिस्थिति टेस्टिंग सिचुएशन से अधिक अच्छी हो। दूसरी बारी के मापन जो परीक्षण टेस्ट या उपकरण एपरेटस का प्रयोग किया गया हो वह पहली बारी के मापन किए गए उपकरणों से अधिक श्रेष्ठ, सुपीरियर हो, आदि आदि। चूँकि इन कारकों पर उस डिज़ाइन में किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, इसलिए इस डिज़ाइन की आंतरिक वैधता विश्वसनीय नहीं रह जाती है। पैराग्राफ चेंज सी, स्थिर समूह तुलना, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। इस डिज़ाइन में प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशंस के दो सेट होते हैं, परंतु प्रयोज्य सब्जेक्ट के एक समूह का दो बार प्रेक्षण न करके दो अलग अलग समूहों का प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस समूह में प्रयोगात्मक विवेचन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट अर्थात X दिया जाता है। O1 तथा दूसरे समूह में प्रयोगात्मक विवेचन नहीं दिया जाता है O2। इसके बाद इन दोनों समूहों की तुलना की जाती है। पहले समूह को प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है तथा दूसरे समूह को नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन इस प्रकार किया जाता है XO1 by O2 बीच की टूटी रेखा इस बात की ओर संकेत करती है कि O1 के समूह तथा O2 के समूह यादृच्छिकरण की प्रक्रिया द्वारा तुल्य नहीं किए गए हैं। इस डिज़ाइन का उपयोग योगाभ्यास वाले शोध में करते हुए यह कहा जा सकता है कि इसमें एक समूह O1 और योगाभ्यास X करेगा तथा दूसरा समूह O2 अभ्यास नहीं करेगा। इसके बाद O1 तथा O2 की तुलना करके शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा, परंतु जो भी निष्कर्ष क्यों ना हो उसे क्या वैलिड माना जा सकता है? शायद नहीं। इसका कारण यह है कि इस डिज़ाइन की आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी कुछ कारकों जैसे चयन पूर्वाग्रह तथा प्रयोगात्मक निष्फलता के कारक द्वारा प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होती रहती है। संभव है कि प्रयोगात्मक समूह O1 तथा नियंत्रित समूह O2 आपस में तुल्य इक्विवेलेंट नहीं हो, क्योंकि उनका यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट तो किया नहीं गया था। चयन पूर्वाग्रह तथा यह भी संभव है कि मानसिक रूप से कम शांत लोग कुछ दिनों तक योगाभ्यास करने पर कुछ कठिनाई महसूस करने लगे हों और उन्होंने योगाभ्यास बंद कर दिया हो। प्रयोगात्मक निष्फलता, पैराग्राफ चेंज, प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के यही तीन प्रमुख प्रकार हैं जिनका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब शोधकर्ता के सामने कई वैकल्पिक डिज़ाइन उपलब्ध न हो, क्योंकि प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन इस बात का उदाहरण पेश करते हैं कि इन तरीकों से शोध या प्रयोग करना काफ़ी दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी न के बराबर होती है। किटर ने एक प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की निर्भरता पर टिप्पणी करते हुए कहा है (_), तीनों प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइनों द्वारा हमें इस बात का उदाहरण मिलता है कि अगर वैकल्पिक डिज़ाइन उपलब्ध है तो इन तरीकों से शोध नहीं करना चाहिए (_). 2, प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन प्राक प्रायोगिक डिज़ाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से श्रेष्ठ होता है, परंतु एक शुद्ध प्रायोगिक डिज़ाइन से काफ़ी घटिया होता है। प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन में प्रयोज्यों को यादृच्छिक ढंग से विवेचन समूह तथा नियंत्रित समूह या साम्य समूह में भी शोधकर्ता आवंटित नहीं कर पाता है, परंतु विवेचन अवस्था तथा अविवेचन अवस्था में तुलना अतुल्य समूहों को लेकर या विवेचन के पहले के ही प्रयोज्यों को लेकर अवश्य ही कर पाता है। प्रायोगिक कल डिजाइन द्वारा स्वाभाविक रूप से होने वाले सामाजिक विवेचनों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। गृह योजना तथा कर योजना आदि कुछ ऐसे ही सामाजिक विवेचनों के उदाहरण हैं। इन सामाजिक विवेचनों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्रयोज्यों का न तो यादृच्छिक चयन किया जा सकता है और ना ही उन प्रयोज्यों को विभिन्न प्रयोगात्मक समूहों या विवेचन समूहों में यादृच्छिक आवंटन भी किया जा सकता है। अतः इन परिस्थितियों में शोधकर्ता प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग कर अपनी शोध समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। किडर 1981 ने प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को उपयुक्त अर्थों में परिभाषित करते हुए कहा है, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन वैसा डिज़ाइन है जिससे यादृच्छिक रूप से आवंटित विवेचन समूह, ट्रीटमेंट ग्रुप तथा साम्य समूह, कंपैरिजन ग्रुप नहीं होते हैं। इसके बदले में यहाँ विवेचन अवस्थाओं एवं अविवेचन अवस्थाओं में तुलना, अतुल्य समूहों, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स को लेकर या विवेचन के पहले की ही प्रयोज्यों को लेकर अवश्य ही किया जाता है। डबल इंटरेड कॉमा क्लोज। किडर द्वारा दी गई परिभाषा से प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का स्वरूप बिल्कुल ही अस्पष्ट हो जाता है। अस्पष्ट है कि इस तरह के डिज़ाइन की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। किडर द्वारा दी गई परिभाषा से प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का स्वरूप बिल्कुल ही अस्पष्ट हो जाता है। अस्पष्ट है कि इस तरह के डिज़ाइन की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ए, इस तरह के डिज़ाइन में प्रयोज्यों का विभिन्न समूहों में यादृच्छिक आवंटन, रैंडम असाइनमेंट नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज। बी, यूँकि यादृच्छिक आवंटन, रैंडम असाइनमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए विभिन्न समूहों आपस में तुल्य इक्विवेलेंट नहीं हो पाते हैं। फिर भी इन समूहों के आधार पर प्रयोगात्मक अवस्था या विवेचन अवस्था तथा अविवेचन अवस्था या नियंत्रित अवस्था के बीच तुलना की जाती है। पैराग्राफ चेंज। इन दोनों विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन निश्चित रूप से प्रयोगात्मक डिज़ाइन से श्रेष्ठ होता है, परंतु एक वास्तविक प्रयोगात्मक डिज़ाइन से घटिया होता है। एक वास्तविक प्रयोगात्मक डिज़ाइन से इसे घटिया होने का मूल कारण प्रयोज्यों का यादृच्छिक आवंटन का न होना है। पैराग्राफ चेंज। प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन की संख्या अनगिनत, काउंटलेस है। कैंपबेल तथा स्टैनले ने इस तरह के 10 प्रमुख डिज़ाइन, जिनमें वे डिज़ाइन सम्मिलित नहीं है जिन्हें इन प्रमुख डिज़ाइनों का ही एक विकृत रूप माना जा सकता है, की व्याख्या की है। इन 10 डिज़ाइनों में से सबसे अधिक उपयोग में आने वाली कुछ प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज। ए, वांछित समय श्रृंखला डिज़ाइन, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन, बाधित समय श्रृंखला डिज़ाइन को प्राक प्रयोगात्मक वर्म ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन का एक विस्तृत रूप माना गया है। इस डिज़ाइन में प्रयोज्यों का एक ही समूह होता है जिसका कई बार प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर किया जाता है। इसके बाद उन पर प्रायोगात्मक विवेचन, ट्रीटमेंट यानी एक्स की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद फिर उस विवेचन के प्रभाव का थोड़े समय अंतराल पर कई बार प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन इस प्रकार किया गया है, O1, O2, O3, O4, O5, X, O6, O7, O8, O9, O10। पैराग्राफ चेंज। इस डिज़ाइन में O5 तथा O6 की तुलना कर शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इन दोनों में अंतर का कारण उनके द्वारा किया गया विवेचन, ट्रीटमेंट यानी एक्स है। परिणाम रिजल्ट्स की निर्भरता की जांच के लिए यह भी आवश्यक है कि शोधकर्ता प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशन के अन्य जोड़ों, पेयर्स का तुलनात्मक अध्ययन कर ले। इस डिज़ाइन द्वारा प्रयोग की आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी पर परिपक्वता, मैचुरेशन तथा परीक्षण, टेस्टिंग के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट नियंत्रित हो जाते हैं, परंतु समकालीन इतिहास जैसे कारकों से डिज़ाइन की आंतरिक वैधता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। पैराग्राफ चेंज। बी, तुल्य समय प्रति 10 डिज़ाइन, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन, तुल्य समूह प्रति 10 डिज़ाइन को समय श्रृंखला डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन का एक उन्नत रूप, इम्प्रूव फॉर्म माना गया है। इसमें भी शोधकर्ता प्रयोज्यों के एक समूह ग्रुप का प्रयोग करता है जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर विवेचन, ट्रीटमेंट या प्रयोगात्मक चर एक्सपेरिमेंटल दिया जाता है तथा उसके पड़ने वाले प्रभावों की माप भी की जाती है। इस डिज़ाइन का संकेतन इस प्रकार किया गया है, X1, O1, XO, O2, X1, O3, XO, O4। इस डिज़ाइन से स्पष्ट है कि इसमें एक ही समूह को थोड़े थोड़े समय अंतराल पर विवेचन ट्रीटमेंट यानी X1 दिया जाता है तथा उसी विवेचन को नए अनुभवों के साथ X0 पुनः समूह में रखा जाता है। प्रत्येक X1 या X0 के बाद उसके पड़ने वाले प्रभाव का प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता छात्रों के एक समूह पर 30 मिनट की राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रो नेशनलाइजेशन बनाई गई फिल्म को दिखलाकर राष्ट्रीयकरण के प्रति मनोवृत्ति एटीट्यूड पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में वह समूह को फिल्म दिखलाएगा X1 तथा उसके बाद राष्ट्रीयकरण के प्रति उसकी मनोवृत्ति की माप O1 करेगा। फिर कुछ दिन बाद वह इस समूह के सदस्यों के साथ राष्ट्रीयकरण के सामान्य फायदों या लाभों पर विचार विमर्श करेगा X0 तथा पुनः इस परिचर्चा के पड़ने वाले प्रभावों मनोवृत्ति पर की माप O2 करेगा। फिर कुछ दिन के बाद इसी समूह को वही फिल्म दिखलाई जाएगी X1 और तुरंत बाद मनोवृत्ति पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की माप O3 की जाएगी। थोड़े समय के बाद पुनः उसी समूह में शोधकर्ता राष्ट्रीयकरण के लाभों पर विचार विमर्श XO करेगा और मनोवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की माप O4 की जाएगी। अंत में शोधकर्ता O1 तथा O2 को O3 तथा O4 की तुलना विशेष सांख्यिकीय परीक्षणों द्वारा करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेगा। यदि सांख्यिकीय विश्लेषण से यह पता चलता है कि O4 पर पहले के प्रेक्षणों अर्थात O1, O2 तथा O3 की तुलना में मनोवृत्ति मापनी पर प्राप्तांक ऊंचा है और यदि ऊंचा प्राप्तांक का प्रतिकूल मनोवृत्ति का द्योतक है तो शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मनोवृत्ति में परिवर्तन उसके द्वारा दिए गए विवेचनों अर्थात X1 तथा X4 द्वारा हुए हैं। इस डिज़ाइन द्वारा आंतरिक वैधता पर बुरा असर डालने वाले कुछ कारकों जैसे परिपक्वता परीक्षण समकालीन इतिहास प्रयोगात्मक नश्वरता आदि का प्रभाव तो नियंत्रित हो जाता है परंतु इस डिज़ाइन में बाह्य वैधता प्रभावित हो जाती है क्योंकि इसमें बार बार विवेचन ट्रीटमेंट यानी एक्स देने से प्रयोज्य उसके साथ अनुकूलन एडेप्टेशन कर लेते देखे गए हैं। पैराग्राफ चेंज सी अतुल्य नियंत्रित समूह डिज़ाइन नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोध में प्रयोगकर्ता या शोधकर्ताओं को अनेक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उसे अध्ययन के लिए प्रयोज्यों का जो समूह प्राप्त हो पाता है इसमें किसी तरह के जोड़ तोड़ की इजाज़त नहीं होती है और समूहों को उन्हें ठीक जैसा है वैसे ही रूप में अध्ययन करना पड़ता है। इस तरह के समूहों को साबुत समूह इंटैक्ट ग्रुप कहा जाता है। साबुत समूहों में से एक समूह प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा दूसरा समूह नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप के रूप में कार्य करता है। ये दोनों समूह अतुल्य नॉन इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि उनका निर्माण प्रयोज्यों का यादृच्छिक ढंग से आवंटित रैंडम असाइनमेंट करके नहीं किया जाता है बल्कि उसी रूप में स्वीकृत किया जाता है जिस रूप में वे स्वाभाविक परिस्थितियों में थे। प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑफ प्रयोगकर्ता विशेष विवेचन ट्रीटमेंट यानी एक्स देता है जबकि नियंत्रित समूह को एक्स नहीं दिया जाता है। प्रयोगात्मक समूह का पहला प्रेक्षण यानी O1 एक्स के पहले तथा दूसरा प्रेक्षण एक्स के बाद यानी O2 दिया जाता है। नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप को O1 तथा O2 के समय अलग से O3 तथा O4 दिया जाता है परंतु कोई एक्स नहीं दिया जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन इस प्रकार किया जाता है GRAO1X O2 by GRP O3 O4। बीच की टूटी रेखा डैश लाइन यह बतलाती है कि दोनों समूह यादृच्छिकरण की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे के तुल्य इक्विवेलेंट नहीं बनाए गए हैं। फिर भी प्रयोगकर्ता अपनी संतुष्टि के लिए प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह को कुछ वैसे चरों पर जो विवेचन के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं तुल्य कर लेता है। इन चरों में उम्र यौन बुद्धि एवं सामाजिक तथा आर्थिक स्तर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रधान है। अंत में प्रयोगकर्ता प्रयोगात्मक समूह या विवेचन समूह में होने वाले माध्य वृद्धि मीन गेन यानी O2 O1 की तुलना विवेचन समूह नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप में होने वाली माध्य वृद्धि मीन गेन यानी ओ फोर ओ थ्री से करता है। यदि ओ टू ओ वन का मान वैल्यू ओ फोर ओ थ्री मान से सार्थक रूप से भिन्न स्टैटिस्टिकली डिफरेंट होता है तो यह समझा जाता है कि विवेचन देने का प्रभाव प्रयोज्यों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता प्रशिक्षण ट्रेनिंग के प्रभाव नक्शा बनाने की क्षमता मैप ड्राइंग एबिलिटी पर क्या पड़ता है का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए मान लिया गया कि भूगोल कक्षा के 30 छात्र उसे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रयोगकर्ता इन छात्रों को दो समूह में बांट देगा। एक समूह विवेचन समूह का होगा जिसमें n इज इक्वल टू 15 होंगे तथा दूसरा समूह अविवेचन समूह का होगा जिसमें भी n इज इक्वल टू 15 होंगे। दोनों समूहों में नक्शा बनाने की क्षमता की माप कर ली जाएगी। विवेचन समूह में इस मापन को O1 तथा अविवेचन समूह में इस मापन को O3 कहा जाएगा। इसके बाद विवेचन समूह ट्रीटमेंट ग्रुप को नक्शा बनाने के लिए एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और पुनः इस समूह के नक्शा बनाने की क्षमता की माप O2 की जाएगी। इस ढंग का प्रशिक्षण अविवेचन समूह नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप को नहीं दिया जाएगा परंतु पुनः इस समूह के नक्शा बनाने की माप O4 की जाएगी। यदि O3 O1 का मान O4 O2 के मान वैल्यू से सार्थक रूप से भिन्न एवं अधिक होगा तो शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर निश्चित रूप से पहुंचेगा कि प्रशिक्षण देने से नक्शा बनाने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस डिज़ाइन का दोष यह बतलाया गया है कि इसमें चयन पूर्वाग्रह सिलेक्शन बायस का नियंत्रण नहीं हो पाता है। इससे डिज़ाइन या प्रयोग की आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी को कुछ खतरा बना रहता है। डी प्रतिसंतुलित डिज़ाइन काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। प्रतिसंतुलित डिज़ाइन वैसे डिज़ाइन को कहा जाता है जिसमें प्रयोगात्मक विवेचन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स को यादृच्छिक ढंग से रैंडमली विभिन्न समूहों ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। इस डिज़ाइन को क्रॉसओवर डिज़ाइन या स्विचओवर डिज़ाइन भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक विवेचन को प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रायः लैटिन वर्ग प्रारूप का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक रो तथा कॉलम में प्रत्येक विवेचन को मात्र एक बार ही दिया जाता है। उदाहरण के रूप में नीचे चार समूहों में चार विवेचनों को चार भिन्न भिन्न समयों में देकर नीचे संकेतन किया गया है। स्ट्रग ऑफ चेंज यह डिज़ाइन का गुण यह है कि इसमें आंतरिक वैधता को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने वाले कारकों जैसे समकालीन इतिहास परिपक्वता परीक्षण चयन पूर्वाग्रह तथा प्रयोगात्मक नश्वरता का तो नियंत्रण हो जाता है परंतु बाह्य वैधता को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने वाले कारक इस डिज़ाइन में प्रवेश कर जाते हैं जिससे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सामान्यीकरण करना संभव नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज ई पृथक प्रतिदर्श प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इस तरह का डिज़ाइन विशेष रूप से वैसी परिस्थिति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता एक ही समय में सभी प्रयोज्यों को विवेचन नहीं प्रदान कर सकता है परंतु सभी प्रयोज्यों को विवेचन ट्रीटमेंट दिया जाना आवश्यक भी होता है। अतः वह लाचार होकर इस प्रतिदर्श सैंपल का चयन करता है और उसे विवेचन देता है। इसके बाद वह पुनः उस दूसरे प्रतिदर्श का चयन करता है तथा उसे विवेचन देता है। प्रत्येक प्रतिदर्श में एक्स देने के पहले एवं बाद में उसके व्यवहारों की मापन या प्रेक्षण कर लिया जाता है। यदि एक्स के बाद का व्यवहार सार्थक रूप से एक्स के पहले के व्यवहार से भिन्न होता है तो ऐसा समझा जाता है कि यह एक्स के फलस्वरूप ही हुआ है। सचमुच में इस तरह के डिज़ाइन में वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अलग प्रतिदर्श पर दोहराया जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन नोटेशन इस प्रकार कर सकते हैं O1 X O2 O3 X O4। मान लिया जाए कि परिस्थिति ऐसी है जिसमें 1000 व्यक्तियों को अंकगणित प्रशिक्षित करना है परंतु शोधकर्ता 100 से अधिक व्यक्तियों को एक समय में प्रशिक्षित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह पहले 100 व्यक्तियों के प्रतिदर्श सैंपल की अंकगणितीय क्षमता अर्थमेटिकली एबिलिटी का माप O1 कर लेगा तथा उसके बाद इस प्रतिदर्श की परीक्षण ट्रेनिंग यानी एक्स दिया जाएगा और पुनः उसकी अंकगणितीय क्षमता की माप O2 की जाएगी। इसके बाद फिर 100 व्यक्तियों का दूसरा प्रतिदर्श सैंपल लिया जाएगा और उसकी अंकगणितीय क्षमता की माप कर उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा और पुनः उसकी अंकगणितीय क्षमता की माप की जाएगी। इसी तरह से वन समूह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की पुनरावृत्ति अलग अलग प्रतिदर्शों पर एक तब तक की जाएगी जब तक कि सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित न कर लिया जाए। बाद में O1 तथा O2 एवं O3 एवं O4 में हुए अंतर की सार्थकता सिग्निफिकेंस की जांच उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण और स्टैटिस्टिकल टेस्ट द्वारा करके शोधकर्ता एक अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा। यदि O2 तथा O4 में वृद्धि क्रमशः O1 एवं O3 से होने वाली वृद्धि गेन से सार्थक रूप से यथार्थ होते पाया जाता है तो प्रयोगकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि प्रशिक्षण यानी एक्स का प्रभाव समूह पर सार्थक रूप से पड़ रहा है। इस डिज़ाइन का दोष यह है कि इसमें आंतरिक वैधता को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करके करने वाले कारक जैसे परिपक्वता परीक्षण तथा चयन से उत्पन्न अंतःक्रिया का नियंत्रण नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज। प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन के कुछ लाभ तथा कुछ परिसीमाएं भी हैं। इस डिज़ाइन के प्रमुख दो लाभ बतलाए गए हैं। पैराग्राफ चेंज एक, प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन द्वारा उन परिस्थितियों में शोध समस्या का उत्तर आसानी से ढूंढा जा सकता है जिसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है या किया जाना संभव नहीं है। पैराग्राफ चेंज दो, यह डिज़ाइन कम खर्चीला तथा कम समय लेने वाला होता है। शायद यही कारण है कि इसका उपयोग उन परिस्थितियों में भी शोधकर्ता द्वारा किया जाता है जहाँ प्रायोगिक डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग होता है, क्योंकि अक्सर प्रायोगिक डिज़ाइन अधिक खर्चीला तथा अधिक समय लेने वाला होता है। पैराग्राफ चेंज इन लाभों के बावजूद प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन के कुछ दोष डिसएडवांटेजेस या परिसीमाएँ हैं जो निम्नांकित हैं। एक, इस डिज़ाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ संभव नहीं है। दो, इस डिज़ाइन में प्रयोज्यों को प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में यादृच्छिक ढंग से आवंटन करना भी संभव नहीं है। तीन, इस डिज़ाइन द्वारा बहिरंग चरों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। चार, इस डिज़ाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल के मापों पर व्यवहारों को रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। उपयुक्त चार कारणों से प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन का प्रयोग एक वास्तविक प्रायोगिक डिज़ाइन की तुलना में काफ़ी कम किया जाता है। पैराग्राफ चेंज तीन, सहसंबंधात्मक डिज़ाइन कोरिलेशनल डिज़ाइन। सहसंबंधात्मक डिज़ाइन का प्रयोग मनोविज्ञान शिक्षा तथा समाजशास्त्र के शोधों में अक्सर होता है। इस डिज़ाइन में अक्सर शोधकर्ता प्रयोज्यों के एक ही समूह पर दो या दो से अधिक बार प्रेक्षण कर प्राप्तांक प्राप्त करता है और प्राप्तांकों के इस सेट के बीच सहसंबंध ज्ञात कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाह सकता है कि पांचवे वर्ग के छात्रों में बुद्धि तथा वर्ग उपलब्धि में क्या संबंध होता है। इसके लिए वह पांचवे वर्ग के छात्रों के एक समूह का चयन करेगा और उस पर बुद्धि परीक्षण तथा सामान्य वर्ग उपलब्धि परीक्षण का क्रियान्वयन करेगा। इस तरह से उसे एक समूह से प्राप्तांकों के दो सेट प्राप्त हो जाएंगे। इन दोनों छात्रों में सहसंबंध याद कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेगा। सहसंबंधात्मक शोध में पियर्सन के घूर्णन अघूर्णन विधि जिसे छोटा आर से संकेतन किया जाता है का अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपयोग किया जाता है। उपयुक्त डिज़ाइन को एक समूह पुनरावृत्त प्रयास डिज़ाइन वन ग्रुप रिपीटेड ट्रायल्स डिज़ाइन भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज इस डिज़ाइन के अलावा सहसंबंधात्मक शोधों में एक अन्य डिज़ाइन का भी प्रयोग होता है जिसे सहसंबंधित समूह डिज़ाइन कहा जाता है। इस तरह के डिज़ाइन में शोधकर्ता दो ऐसे समूहों का प्रयोग करता है जो सम्मिलित मैच होते हैं या व्यक्तियों के एक ही समूह होते हैं परंतु उनका प्रेक्षण एक बार प्री टेस्ट अवस्था में किया जाता है तथा दूसरी बारी में उनका प्रेक्षण पोस्ट टेस्ट अवस्था में किया जाता है। फिर इन दोनों तरह की अवस्थाओं से अवस्थाओं से मिले प्राप्तांक के बीच सहसंबंध ज्ञात कर शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। पैराग्राफ चेन सहसंबंधात्मक डिज़ाइन कोरिलेशनल डिज़ाइन के कुछ लाभ तथा परिसीमाएं या दोष भी बतलाए गए हैं। इसके प्रमुख लाभों का वर्णन निम्नांकित है। एक, इस डिज़ाइन में चरों के बीच संबंध की मात्रा ज्ञात हो जाती है जो अन्य किसी दूसरे डिज़ाइन द्वारा संभव नहीं है। दो, सहसंबंध में अनेकों चरों की माप मेजरमेंट एक साथ संभव है तथा उसके संबंधों को एक साथ अध्ययन किया जाना संभव है। प्रयोगात्मक डिज़ाइनों एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में इस ढंग का लाभ मिलना असंभव तो नहीं परंतु तुलनात्मक रूप से कठिन अवश्य है। पैराग्राफ चेंज तीन, सहसंबंधात्मक डिज़ाइन का प्रयोग उन अवस्थाओं में भी संभव है जहाँ प्रयोगात्मक या प्रायोगिक डिज़ाइन का उपयोग नैतिक रूप से अव्यवहारिक होता है। पैराग्राफ चेंज चार, सहसंबंधात्मक डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें चरों का अध्ययन परिस्थिति में कम से कम विघटन उत्पन्न कर लिया जाता है जबकि अन्य डिज़ाइन में ऐसी सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि प्रयोगात्मक डिज़ाइन में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस डिज़ाइन में जो परिस्थिति में कृत्रिमता अधिक उत्पन्न हो जाती है इन लाभों के बावजूद सहसंबंधात्मक डिज़ाइन में कुछ दोष हैं जो निम्नांकित है। एक, इस डिज़ाइन का सबसे प्रमुख दोष यह बतलाया गया है कि इस डिज़ाइन में चरों में कारण परिणाम संबंध कायम करना संभव नहीं है। दो, इस डिज़ाइन में परिस्थिति पर शोधकर्ता को उतना नियंत्रण नहीं रहता है जितना कि एक प्रायोगिक डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होता है। चार, वैषम्य डिज़ाइन, इसे तुलनात्मक डिज़ाइन कंपैरेटिव डिज़ाइन भी कहा जाता है। इस डिज़ाइन का प्रयोग ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण में किया जाता है जहां केसेस की संख्या इतनी कम होती है कि उनका सांख्यिकीय जोड़ तोड़ स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन संभव नहीं है। जैसे जब शोधकर्ता एक राष्ट्र या धर्म या समाज के लोगों के व्यवहार की तुलना दूसरे राष्ट्र या धर्म या समाज के व्यक्तियों से करना चाहता है तो इसमें वैषम्य डिज़ाइन का प्रयोग उपयुक्त समझा जाता है। इस डिज़ाइन में कम से कम दो समूह होते हैं और इन दोनों की तुलना आश्रित चर पर की जाती है। ऐसे समूहों को भिन्न या अपसारी समूह कहा जाता है। वैषम्य डिज़ाइन का प्रयोग कर शोधकर्ता यह निश्चय कर सकता है कि हिंदू मुस्लिम सिख तथा ईसाई में से किस समुदाय के लोगों में आक्रामकता व्यवहार अधिक या कम होता है। इसका अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता इन चार समुदायों से यथासंभव बराबर बराबर संख्या में व्यक्ति का चयन करके प्रत्येक समूह में आक्रामकता व्यवहार अग्रेसिव बिहेवियर की माप करके आक्रामकता माध्य प्राप्तांक की तुलना करेगा। अक्सर ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता एक विशेष सांख्यिकीय परिकलन का उपयोग करता है जिसे एफ टेस्ट कहा जाता है। एफ टेस्ट का मान ज्ञात करके वह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि इन चार समूहों में से किस समुदाय के लोग सबसे अधिक आक्रामक होते हैं। उसी तरह से मान लिया जाए कि शोधकर्ता छोटे आकार स्मॉल साइज के परिवार तथा बड़े आकार लार्ज साइज के परिवार का प्रभाव बच्चों के व्यवहारों पर देखने के लिए इन दोनों तरह के परिवारों से बच्चों का एक एक समूह लेकर उसकी तुलना आपस में करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में वैषम्य डिज़ाइन का प्रयोग उचित होगा। जॉनसन तथा मेडिसन ने एक ऐसा ही अध्ययन 1969 में एक ऐसा ही अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि छोटे आकार के परिवार से आने वाले बच्चों में सक्रियता स्तर बड़े आकार के परिवार से आने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज पाँच, केस अध्ययन डिज़ाइन केस स्टडी डिज़ाइन। केस अध्ययन डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें व्यक्तिगत केस इंडिविजुअल केस का अध्ययन किया जाता है। केस डिज़ाइन में किसी स्वतंत्र चर में न तो किसी प्रकार का जोड़ तोड़ ही किया जाता है और न ही उसमें परिवर्तन की उम्मीद की जाती है बल्कि मौजूदा या बीते हुए हालातों पर विचार किया जाता है। इस डिज़ाइन में अध्ययन की इकाई यूनिट एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार फैमिली हो सकता है या एक सामाजिक समूह सोशल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ इस ढंग से आंकड़े संग्रह किए जाते हैं जिसमें अध्ययन की जाने वाली वस्तु का एकात्मक स्वरूप बना रहता है। ऐसा नहीं होता है अध्ययन किए जा रहे किसी एक समूह को या परिवार को फिर छोटे छोटे विभिन्न विवेचन समूह ट्रीटमेंट्स ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। इस तरह के डिज़ाइन का महत्वपूर्ण दोष यह बतलाया गया है कि इसके द्वारा व्यक्ति केस इंडिविजुअल केस का मात्र वर्णनात्मक अध्ययन डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता है, व्याख्यात्मक अध्ययन एक्सप्लेनेटरी स्टडी नहीं हो पाता है। पहला चेंज, सर्वे शोध डिज़ाइन में जीव संख्या, पॉपुलेशन में व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी गुण के वितरण तथा आयतन इंसिडेंस का पता लगाया जाता है। सर्वे शोध डिज़ाइन के निम्नांकित दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला चेंज ए, स्थिर समूह तुलना डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। यह डिज़ाइन प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के समूह तुलना डिज़ाइन पर आधारित है। इस डिज़ाइन का प्रयोग चरों, वेरिएबल्स में संबंधों, रिलेशनशिप की व्याख्या तथा उसके आयतन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस डिज़ाइन में दो या दो से अधिक तुलनात्मक समूह कंपैरिजन ग्रुप्स होते हैं जो एक्स यानी विवेचन ट्रीटमेंट पर के मान वैल्यू के रूप में परिभाषित होते हैं। बाद में इन दोनों समूहों की तुलना ऊपर यानी आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन पर की जाती है। इस डिज़ाइन का संकेतन नोटेशन इस प्रकार किया जाता जा सकता है, x1 q1 पाई x1 o2। उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि किसी सर्वे शोध में शोधकर्ता व्यक्ति की आय पर उसके व्यवसाय का क्या असर पड़ता है इसका अध्ययन करना चाहता है। मान लिया जाए कि शोधकर्ता व्यवसाय जो यहाँ एक्स है के आधार पर दो समूह तैयार करता है, मेडिकल डॉक्टरों का समूह तथा इंजीनियरों का समूह, तथा ओ यहाँ आय की माप को बतला रहा है। यदि ये दोनों तुलनात्मक समूह अर्थात डॉक्टरों का समूह तथा इंजीनियरों का समूह आपस में आय की माप पर सार्थक रूप से सिग्निफिकेंटली भिन्न पाए जाते हैं तो शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि व्यवसाय का प्रभाव व्यक्ति की आय पर पड़ता है। इस ढंग के निष्कर्ष के विरोध में एक महत्वपूर्ण बात यह उठती है कि ये दोनों समूह चूंकि तुल्य नहीं हैं इसलिए इन दोनों की आय में अंतर होने का कारण कुछ अन्य कारक जैसे व्यक्ति की अपनी मेहनत, लेबर, उसकी अभिरुचि आदि हो सकता है, न कि सिर्फ उसका व्यवसाय। इसके अलावा इस डिज़ाइन में समय क्रम टाइम ऑर्डर का भी दोष पाया गया जाता है जिसके चलते एक निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ओ का कारण एक्स ही है। सच्चाई यह है कि इस डिज़ाइन में एक्स तथा ओ का मान एक ही समय में उपयुक्त विधियों अप्रोप्रियट मेथड द्वारा किया जाता है, अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि ओ कारण एक्स ही है। पैराग्राफ चेंज बी, पैनल डिज़ाइन। पैनल डिज़ाइन दूसरा प्रमुख सर्वे शोध डिज़ाइन है जिसमें उपयुक्त डिज़ाइन में व्याप्त समय क्रम ऑर्डर के दोष को भरसक दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस डिज़ाइन में दो या दो से अधिक बारी में एक्स तथा ओ पर आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि इसमें भिन्न भिन्न समय क्रम एवं एक्स तथा ओ में उस समय अंतरालों में होने वाले परिवर्तनों की वैज्ञानिक व्याख्या संभव हो पाती है। इस डिज़ाइन का संकेतन इस प्रकार किया जा सकता है, पैराग्राफ चेंज। इस संकेतन में प्रत्येक एक्स में दो छोटे छोटे अंक हैं। पहले अंक द्वारा चर के स्तर का पता चलता है, जैसे यौन चर के लिए पुरुष तथा महिला, पुरुष को एक तथा महिला को दो से दिखलाया जा सकता है। इस तरह के डिज़ाइन में ऊपर वाले सभी एक्स का पहला अंक एक है, अतः इसे सिर्फ पुरुषों पर प्राप्त आंकड़े माने जाएंगे। उसी तरह डिज़ाइन में नीचे वाले सभी एक्स का पहला अंक दो है, अतः इसे सिर्फ महिलाओं पर प्राप्त आंकड़े माने जाएंगे। एक्स के दूसरे अंक द्वारा उन प्रमुख चरों वेरिएबल्स की पहचान की जाती है जिन पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। डिज़ाइन के अनुसार एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री तथा ओ पर आंकड़े एक बारी में या एक साक्षात्कार में संग्रहण किए जाते हैं। X2, X3 तथा O पर आंकड़े दूसरी बारी में या दूसरे साक्षात्कार में संग्रह किए जाते हैं और उसी तरह से X2 तथा O पर आंकड़े तीसरी बारी में संग्रह किए जाते हैं। डिज़ाइन से स्पष्ट है कि इसमें आंकड़े X तथा O पर भिन्न भिन्न समयों में संग्रह किए जाते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि पुरुष एवं महिलाओं का वोटिंग व्यवहार का आयतन तथा वितरण व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा उनके रोजगार स्तर द्वारा किस ढंग से संबंधित है, इस अध्ययन को उपयुक्त डिजाइन के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा। इस अध्ययन में पुरुष X1 तथा महिला X2 दो स्तर के प्रतिदर्श होंगे। सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ में पुरुषों एवं महिलाओं को तीन तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर पुरुष वर्ग X11, मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर पुरुष वर्ग, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पुरुष वर्ग X13। उसी तरह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर स्त्री वर्ग, मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर स्त्री वर्ग तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर स्त्री वर्ग। इस अध्ययन में वोटिंग व्यवहार ओ आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल का उदाहरण है। प्रतिदर्श सैंपल में रोजगार के दो स्तर हो सकते हैं। रोजगार में लगे पुरुष X12 तथा बेरोजगार पुरुष X13। उसी ढंग से महिलाओं में रोजगार में लगी महिलाएं X22 तथा बेरोजगार महिलाएं X33। शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्तर के तीनों श्रेणियों के पुरुष एवं महिलाओं के वोटिंग व्यवहार का अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू लेगा और फिर इसी प्रक्रिया को एक साल या 6 महीने के बाद दोहराएगा। उसी ढंग से बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं तथा रोजगार में लगे पुरुषों एवं महिलाओं के वोटिंग व्यवहार का अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार करेगा और फिर इसी प्रक्रिया को 1 साल या 6 महीने के बाद दोहराएगा। इस ढंग से शोधकर्ता को समय बीतने के साथ एक्स का ओ पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चल जाता है तथा साथ ही साथ वह एक निश्चित निष्कर्ष पर भी पहुंचने में समर्थ हो जाता है। जैसे वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि वोटिंग व्यवहार में उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों द्वारा अन्य दोनों स्तर के लोगों की तुलना में कम अभिरुचि इंटरेस्ट दिखलाई जाती है तथा बेरोजगार व्यक्ति रोजगार में लगे व्यक्तियों की अपेक्षा वोटिंग कार्यक्रम में अधिक दिलचस्पी दिखलाते हैं। सर्वे शोध डिजाइन, सर्वे रिसर्च डिजाइन के भी कुछ लाभ तथा परिसीमाएं या दोष हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, सर्वे शोध डिजाइन द्वारा जीव संख्या के बारे में अनेकों प्रकार की सूचनाएं एक साथ मिल जाती हैं, अतः इस डिजाइन की पहुंच स्कोप अन्य डिजाइनों की तुलना में अधिक है। दो, सर्वे शोध डिजाइन में परिशुद्धता एक्यूरेसी अधिक होती है क्योंकि प्रायः इस डिजाइन में अधिक संख्या में प्रयोजकों का उपयोग संभव है। पैराग्राफ चेंज 3, इन लाभों के बावजूद भी इस डिजाइन के कुछ दोष हैं जो निम्नांकित हैं। एक, यह डिजाइन व्यवहारिक कम होता है क्योंकि इसमें समय टाइम तथा धन अधिक लगता है। दो, इस डिजाइन द्वारा चरों को गहन रूप से अध्ययन किया जाना संभव नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज अप्रयोगात्मक डिजाइन के बारे में सामान्य निष्कर्ष जनरल कंक्लूजन रिगार्डिंग नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ऊपर में 6 विभिन्न तरह के अप्रयोगात्मक डिजाइनों का वर्णन किया गया है। इन डिजाइनों में जहाँ तक प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का प्रश्न है, उसका उपयोग यदि नहीं किया जाए या सिर्फ वैसी ही परिस्थितियों में किया जाए जहां कोई प्रभावी विकल्प इफेक्टिव अल्टरनेटिव नहीं है तो अति उत्तम माना जाता है। मनोविज्ञान शिक्षा तथा समाजशास्त्र के शोधों में प्रायोगिक कल्प डिजाइन, सहसंबंधात्मक डिजाइन तथा सर्वे डिजाइन में प्रयोग तुलनात्मक रूप से अन्य डिजाइनों जैसे वैषम्य डिजाइन तथा केस अध्ययन डिजाइन की अपेक्षा अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण यह बतलाया गया है कि इन डिजाइनों में आंतरिक वैधता एवं बाह्य वैधता को प्रभावित करने वाले कारक तुलनात्मक रूप से अधिक नियंत्रित होते हैं। पैराग्राफ चेंज ख प्रयोगात्मक डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में उपयोग होने वाले डिजाइनों में प्रयोगात्मक डिजाइन या प्रायोगिक डिजाइन का महत्व सर्वाधिक है। इस डिजाइन को मनोवैज्ञानिक शोधों में काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल भी माना गया है क्योंकि मनोविज्ञान मूलतः एक प्रकार का प्रयोगात्मक विज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइंस है। प्रयोगात्मक शोध डिजाइन के दो भिन्न परंतु संबंधित रिलेटेड अर्थ हैं। एक सामान्य अर्थ में प्रयोगात्मक डिजाइन से तात्पर्य प्रयोगात्मक शोध के उन सभी चरणों स्टेप्स से होता है जो प्राकल्पना की अभिव्यक्ति से लेकर निष्कर्ष तक पहुँचने में निहित होता है। दूसरे शब्दों में इस सामान्य अर्थ जनरल मीनिंग में प्रायोगिक डिजाइन का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में निहित सभी कदमों या चरों स्टेप्स से होता है। एक दूसरे विशेष अर्थ में जो तुलनात्मक रूप से अधिक लोगों को मान्य है, प्रयोगात्मक डिजाइन से तात्पर्य उन प्रविष्टियों से होता है जिनके सहारे प्रयोगकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन करता है, प्रयोज्यों को विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाओं में यादृच्छिक रूप से आवंटित करता है तथा एक उपयुक्त सांख्यिकीय विश्लेषणात्मक परीक्षण का प्रयोग माफ कीजिए चयन करता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक डिजाइन में कम से कम निम्नांकित तीन विशेषताएं अवश्य होती हैं। पैराग्राफ चेंज। एक, इस डिजाइन द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करने की जरूरत होती है। दो, इस डिजाइन में इस बात का भी उल्लेख रहता है कि प्रयोगियों को यादृच्छिक ढंग से किस तरह से विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाओं में आवंटित किया जा सकता है। तीन, प्रयोग के परिणाम का विश्लेषण करने के लिए इस डिजाइन में उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का भी संकेत रहता है। पैराग्राफ चेंज। प्रयोगात्मक डिजाइन के विभिन्न प्रकार हैं। सच पूछा जाए तो सभी प्रयोगात्मक डिजाइन के उद्देश्य त्रुटि प्रसरण को कम करना, बहिरंग चरों को नियंत्रित करना तथा प्रयोगात्मक प्रसरण को अधिक से अधिक बढ़ाना होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने की दिशा में प्रयोगकर्ता बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह की प्रविधियों को अपनाता है तथा विभिन्न प्रयोगात्मक समूहों का भी उपयोग करता है। साधारणतः प्रयोगात्मक डिजाइन को निम्नांकित दो कसौटियों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। पैराग्राफ चेंज। ए, नियंत्रित प्रविधि कंट्रोल प्रोसीजर्स। डिजाइन में बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए कोई नियंत्रण प्रविधियों जैसे स्थिरता, विलोपन, संतुलन, प्रतिसंतुलन, बहिरंग चर को स्वतंत्र चर के रूप में प्रयोग करना तथा यादृच्छिकरण का उपयोग किया जाता है। इन डिजाइनों का नामकरण नियंत्रण की प्रविधियों के अनुकूल किया जाता है। जैसे जिस प्रयोगात्मक डिजाइन में यादृच्छिकरण का उपयोग किया जाता है उसे यादृच्छिकृत द्विसमूह डिजाइन, टू ग्रुप डिजाइन, यादृच्छिकृत त्रिसमूह डिजाइन आदि कहा जाता है। उसी तरह से उस प्रयोगात्मक डिजाइन जिसमें बहिरंग चर को नियंत्रित करने के लिए उसे स्वतंत्र चर में बदल दिया जाता है को कारक गुणित डिजाइन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। बी, प्रयोजों के समूह की संख्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। प्रयोगात्मक डिजाइन के का नामकरण करने में प्रयोज्यों के समूह की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। सामान्यतः इस ख्याल से प्रयोगात्मक डिजाइन के दो भागों में बांटा जा सकता है, एकाकी समूह डिजाइन तथा पृथक समूह डिजाइन। एकाकी समूह डिजाइन को विदित प्रयोज्य डिजाइन भी कहा जाता है तथा पृथक समूह डिजाइन को मध्य प्रयोज्य डिजाइन भी कहा जाता है। एकाकी समूह डिजाइन या विदित प्रयोज्य डिजाइन वैसे डिजाइन को कहा जाता है जिसमें प्रयोज्यों के एक ही बार स्वतंत्र पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सभी मानों में कार्यरत होते हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह के डिजाइन में एक ही तरह के समूह सभी प्रयोगात्मक अवस्थाओं में कार्यरत होता है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एकाकी समूह डिजाइन का एक अच्छा नमूना है। पृथक समूह डिजाइन या मध्य समूह डिजाइन वैसे डिजाइन को कहा जाता है जहां प्रयोग के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सभी मानों के लिए अलग अलग समूह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस डिजाइन में प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था के लिए एक पृथक समूह का उपयोग किया जाता है। सोलोमोन चार समूह डिजाइन पृथक समूह डिजाइन का एक उत्तम उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः एकाकी समूह डिजाइन को पृथक समूह डिजाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली नहीं माना जाता है। इसका मूल कारण यह है कि किसी भी प्रयोगात्मक शोध की तीन प्राथमिक जरूरतों अर्थात जोड़ तोड़, तुलना तथा मूल्यांकन में से तुलना की जरूरत एकाकी समूह डिजाइन में पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे प्राप्त आंकड़ों की तुलना एक तुलनात्मक समूह के अभाव में नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज। सच्चाई यह है कि प्रयोगात्मक डिजाइन के विभिन्न प्रकारों का नामकरण नियंत्रण प्रविधियों तथा प्रयोज्यों के समूहों की संख्या दोनों के आधार पर की जाती है। जैसे अब कारक गुणे डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन का ही उदाहरण ले लिया जाए, इस डिज़ाइन में बहिरंग चर का नियंत्रण उसे एक स्वतंत्र चर में बदल कर किया जाता है तथा प्रयोज्यों की संख्या भी सामान्यतः दो से अधिक होती है। उसी तरह से सोलोमोन चार समूह डिज़ाइन को ले लिया जाए, यह भी एक तरह का 2×2 कारक गुण डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन ही है, जिसमें प्रयोज्यों के चार समूहों का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, प्रयोगात्मक डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कई प्रकार टाइप्स हैं और उन सभी का वर्णन इस पुस्तक के सीमा क्षेत्र से बाहर है। यहाँ पर हम मूलतः वैसे डिज़ाइनों की ही चर्चा करेंगे जो प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुधा प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे समूह 60 डिज़ाइन निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज एक, सिर्फ यादृच्छिककृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन, रैंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यह काफ़ी प्रचलित डिज़ाइन है। इसे पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट डिज़ाइन भी कहा जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन नोटेशन इस प्रकार से किया जाता है, RXO1 RO2। इस डिज़ाइन में प्रयोज्यों के दो समूह होते हैं तो जो यादृच्छिक रूप रैंडमली से आवंटित होते हैं। एक समूह में विवेचन ट्रीटमेंट अर्थात एक्स दिया जाता है, दूसरे समूह में विवेचन यानी एक्स नहीं दिया जाता है। पहले समूह को प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा दूसरे समूह को नियंत्रित समूह कहा जाता है। ये दोनों समूह चूँकि यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इसलिए वे तुल्य इक्विवेलेंट होते हैं। शायद यही कारण है कि डिज़ाइन के संकेतन में टूटी रेखा नहीं है। इतना ही नहीं, आर इस बात का संकेत कर रहा है कि इन प्रयोज्यों की जीव संख्या पॉपुलेशन से प्रारंभ में चयन सिलेक्शन भी यादृच्छिक ढंग से किया गया था। एक्स देने के बाद प्रयोगात्मक समूह का डिपेंडेंट वेरिएबल पर मापन किया जाता है तथा एक्स नहीं प्राप्त करने वाले समूह यानी नियंत्रित समूह का भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर मापन कर प्राप्तांक स्कोर प्राप्त कर लिया जाता है। इन दोनों समूहों के प्राप्तांकों के माध्यम के अंतर की असार्थकता की जांच उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण जैसे एफ टेस्ट, टी टेस्ट, मैक टेस्ट, विटनी यू टेस्ट आदि के द्वारा किया जाता है। अस्पष्ट है कि इस डिज़ाइन में बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन की प्रविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज एक, उदाहरण मान लिया जाए कि कोई प्रयोगकर्ता 10 व्यक्तियों को 50 व्यक्तियों में से यादृच्छिक ढंग से रैंडमली चयन कर लेता है, फिर इन 10 प्रयोज्यों को दो समूहों में एक यादृच्छिक रूप से आवंटित कर देता है। मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि किसी शाब्दिक पार्ट वर्बल टास्क के धारण रिटेंशन पर दंड पनिशमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता की प्राकल्पना हाइपोथीसिस यह है कि दंड देने से धारणा प्राप्तांक में वृद्धि होती है। इस डिज़ाइन के अनुकूल एक समूह को पाठ सीखते समय वह कुछ दंड एक्स भी साथ साथ देगा तथा दूसरे समूह को पाठ सीखते समय दंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दोनों समूहों के धारण की मापन की जाएगी और उनको समूहों के धारणा प्राप्तांक के माध्य के अंतर की सार्थकता टी परीक्षण या एफ परीक्षण या मान विटनी यू द्वारा कर लिया जाएगा। पैराग्राफ चेंज, इस डिज़ाइन में चूंकि जीव संख्या से प्रयोज्यों को आरंभिक चयन यादृच्छिक ढंग से किया जाता है, अतः प्रयोग की वैधता वैलिडिटी को आघात पहुंचने वाले कारक जैसे चयन पूर्वाग्रह तथा प्रयोगात्मक निष्फलता जैसे कारक अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। इस ढंग से दोनों अवस्थाओं में प्रयोज्यों का यादृच्छिक आवंटन होने के कारण समकालीन इतिहास तथा परिपक्वता जैसे कारक जो प्रयोग की वैधता को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करते हैं भी नियंत्रित हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज दो, सिर्फ यादृच्छिककृत समेकित पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिज़ाइन। यह डिज़ाइन सिर्फ यादृच्छिककृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह से काफ़ी मिलता जुलता है, परंतु मूल अंतर यह है कि सिर्फ यादृच्छिककृत पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिजाइन में बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए मात्र यादृच्छिकरण की प्रविधि का उपयोग किया जाता है, जबकि यादृच्छिकृत सम्मिलित सिर्फ पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिजाइन में बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के लिए यादृच्छिकरण तथा स्थिरता दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन इस तरह से किया जाता है। करारा चेंज, इस डिज़ाइन में भी दो समूह होते हैं और दोनों समूहों का प्रारंभिक चयन इनिशियल सिलेक्शन जीव संख्या से यादृच्छिक ढंग से रैंडमली किया जाता है। फिर इन प्रयोज्यों को उस बहिरंग चर पर सम्मिलित कर दिया जाता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद प्रयोज्यों को भी समूह में यादृच्छिक विभाजन कर समूहों में यादृच्छिक आवंटन या यादृच्छिक विभाजन कर दिया जाता है। एक समूह में विवेचन अर्थात एक्स दिया जाता है तथा दूसरे समूह को एक्स से वंचित रखा जाता है। फिर दोनों समूहों की निष्पादन परफॉर्मेंस की माप डिपेंडेंट वेरिएबल पर की जाती है और डिपेंडेंट वेरिएबल पर के प्राप्तांकों स्कोर्स के माध्यम के अध्ययन अंतर की सार्थकता टी परीक्षण या एफ परीक्षण या मान विटनी यू परीक्षण द्वारा करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। पैराग्राफ चेंज, एक उदाहरण मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता एक विशेष प्राकल्पना हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए एक प्रयोग करना चाहता है। प्राकल्पना है आपस में संबंधित शब्दों जैसे शिक्षक छात्र पुस्तक स्कूल पेंसिल आदि की धारणा। रिटेंशन, आपस में असंबंधित शब्दों जैसे वृक्ष आसमान घर घास आदि की धारणा से श्रेष्ठ सुपीरियर होती है। मान लिया जाए कि वह यादृच्छिक ढंग से रैंडमली 100 छात्रों में से 10 छात्रों का चयन करता है। आर, प्रयोगकर्ता यह सोचता है कि इस प्रयोग में प्रयोज्य सब्जेक्ट्स की बुद्धि इंटेलिजेंस एक प्रमुख बहिरंग चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकता है जो उसके बाद धारण प्राप्तांक को रिटेंशन स्कोर को प्रभावित कर सकता है। अतः वह सम्मेलन प्रविधि मैचिंग टेक्निक के आधार पर बुद्धि जैसे बहिरंग चर को नियंत्रित करने का निश्चय करता है। अतः वह 10 प्रयोज्यों पर बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट क्रियान्वयन करके उनका बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात कर लेता है जिसे तालिका 4 में दिखलाया गया है। दस प्रयोज्यों को 2 सम्मिलित समूह में बांटने के ख्याल से तालिका 4 में प्रयोज्यों को बुद्धि लब्धि के रूप में कोटि क्रम रैंक ऑर्डर करके दिखलाया गया है। इसके बाद 10 प्रयोज्यों को प्रयोगकर्ता 5 जोड़ा में बदल देगा। प्रयोज्य संख्या 1 और 2 मिलकर पहला जोड़ा बनाएंगे, प्रयोग 3 और 4 मिलकर दूसरा जोड़ा बनाएंगे और इसी तरह प्रयोज्य 9 और 10 मिलाकर अंतिम जोड़ा यानी फिफ्थ जोड़ा बनाएंगे। इसके बाद प्रत्येक जोड़े से एक प्रयोज्य को समूह ए तथा समूह बी में यादृच्छिक ढंग से आवंटित किया जाएगा। प्रयोगकर्ता सिक्का उछाल कर यादृच्छिक आवंटन कर सकता है, जैसे वह एक निर्णय कर सकता है सिक्का उछालने पर यदि चित आएगा तो विषय संख्या वाले प्रयोज्य अर्थात प्रयोज्य संख्या 1, 3, 5 आदि समूह ए में या समूह बी में रहेंगे। इस तरह से प्रयोगकर्ता को 5 बार सिक्का उछालना होगा और तब जाकर सम्मिलित प्रयोज्यों का 2 समूह में यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट हो पाएगा। अब समूह ए या समूह बी तैयार हो जाएगा जो वह पुनः सिक्का उछाल कर एक निश्चित कर लेगा कि इन दोनों समूहों में से कौन प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा तथा कौन नियंत्रण समूह होगा। थोड़े देर के लिए मान लिया जाए कि समूह ए प्रयोगात्मक समूह तथा बी नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप के रूप में उभर कर आता है। अब इन सारी प्रक्रियाओं के बाद बनने वाला समूह 2 समूहों की रूपरेखा तालिका 5 के अनुकूल होगी। पैराग्राफ चेंज, दोनों समूह तैयार हो जाने के बाद समूह ए बी संबंधित शब्दों की एक सूची एक खास समय जैसे 5 मिनट तक याद करेगा और समूह बी 20 असंबंधित शब्दों की एक सूची 5 मिनट तक याद करेगा। 4 दिन या जो समय प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित किया जा चुका है बीतने के बाद प्रयोगकर्ता सभी प्रयोज्यों से याद किए हुए सूची के शब्दों का प्रत्याहार रिकॉल करने को कहेगा। इस तरह से प्रयोगकर्ता को प्राप्तांकों का 2 सेट प्राप्त हो जाएगा 4 लिखा 6 में ऐसे प्राप्तांकों को दिखलाया गया है। पैराग्राफ चेंज, तालिका 6 के आंकड़ों के समूह ए तथा समूह बी में अंतर की सार्थकता की जाए परीक्षण से करके या मान विटनी यू परीक्षण से करके प्रयोगकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा। यदि समूह ए का उच्च माध्य समूह बी के निम्न माध्य से सार्थक रूप से भिन्न पाया जाता है तो प्रयोगकर्ता द्वारा बनाई गई प्राकल्पना का पूर्ण समर्थन होते समझा जाएगा। पैराग्राफ चेंज 3 प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिजाइन भी एक काफ़ी लोकप्रिय डिजाइन है जिसका उपयोग प्रयोगात्मक शोध में अत्यधिक होता है। इस डिज़ाइन में भी 2 समूह होते हैं और समूह दोनों समूहों की आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर जांच विवेचन यानी एक्स देने के पहले कर लिया जाता है और फिर उसमें से एक समूह 2 को एक्स यानी आई वी दिया जाता है तथा दूसरे समूह को उनसे वंचित रखा जाता है। अंत में दोनों समूहों के माप डिपेंडेंट वेरिएबल पर करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन इस ढंग से किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, संकेतन से स्पष्ट है कि सभी प्रयोज्यों का चयन प्रयोगकर्ता यादृच्छिक ढंग से करता है तथा फिर उसका 2 समूहों में यादृच्छिक आवंटन भी करता है। इस डिज़ाइन में चूंकि एक नियंत्रित समूह का उपयोग किया जाता है अतः आंतरिक वैधता को आघात पहुँचाने वाले कारक जैसे परिपक्वता समकालीन इतिहास तथा सांख्यिकीय प्रतिगमन आदि नियंत्रित हो जाते हैं। प्रयोज्यों का 2 समूह में यादृच्छिक आवंटन हो जाने के कारण चयन पूर्वग्रह तथा प्रयोगात्मक जैसे नश्वरता जैसे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक भी इसमें नियंत्रित रहते हैं। परंतु इस डिज़ाइन में परीक्षण प्रभाव टेस्टिंग इफेक्ट जैसे कारक जिनका भी प्रयोग की आंतरिक वैधता का पर बुरा असर पड़ता है नियंत्रित नहीं हो पाता है। प्रयोज्य को फिट टेस्ट देने से उसमें विशेष अनुभव उत्पन्न हो जाते हैं जिसका विशेष फायदा उसे पोस्ट स्टेट में हो जाता है। चूंकि इस डिज़ाइन में लाभ प्राप्तांक अर्थात पोस्ट स्टेट प्राप्तांक में से प्री टेस्ट प्राप्तांक को घटाकर प्राप्त होने वाला अंक के माध्यम के अंतर का सांख्यिकीय विश्लेषण पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अतः पोस्ट टेस्ट प्राप्तांक में प्री टेस्ट के अनुभव से उत्पन्न विशेष लाभ अपने आप शामिल हो जाते हैं। ऐसे प्रभावों को अलग कर सांख्यिकीय विश्लेषण करने का इस डिज़ाइन में कोई प्रावधान नहीं है। यह इस डिज़ाइन की एक मुख्य त्रुटि बतलाई गई है। पैराग्राफ चेंज, एक उदाहरण मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता छात्रों के अंकगणितीय क्षमता पर प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन इस डिज़ाइन द्वारा करना चाहता है। मान लिया जाए कि वह विज्ञान संकाय के 100 छात्रों में से 10 छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से करता है। इसके बाद इन 10 छात्रों को वह सिक्का उछाल कॉइन टॉसिंग करके 2 समूहों में यादृच्छिक ढंग से रैंडमली आवंटित कर देगा। पुनः सिक्का उछाल करके अर्थात यादृच्छिक ढंग से वह यह निर्णय कर ले कि इन दोनों समूहों में से कौन प्रयोगात्मक समूह के रूप में तथा कौन नियंत्रित समूह के रूप में कार्य करेगा। इन दोनों समूहों के अंकगणितीय क्षमता की जाँच पहले कर ली जाएगी अर्थात प्री टेस्ट प्राप्तांक प्रू टेस्ट स्कोर द्वारा कर लिया जाएगा। इसे 01 माफ कीजिए O1 तथा O3 कहा जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इन दोनों समूहों को प्री टेस्ट प्राप्तांक तालिका 7 के अनुकूल है। पैराग्राफ चेंज, तालिका 7 में समूह ए जो प्रयोगात्मक समूह है तथा समूह बी जो नियंत्रित समूह है का एक्स के पहले यानी प्रशिक्षण ट्रेनिंग के पहले अंकगणितीय क्षमता प्रशिक्षण अर्थमेटिकल एबिलिटी टेस्ट पर के प्राप्तांक दिखलाए गए हैं। अब मान लिया जाए कि समूह ए को 2 दिन का अंकगणित में विशेष प्रशिक्षण अंडर ब्रैकेट एक्स दिया जाता है। प्रस्तुत समूह बी को कोई भी ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने के 3 दिन बाद इन दोनों समूहों को पुनः गणितीय क्षमता अर्थमेटिकल एबिलिटी टेस्ट दिया जाता है। यह पोस्ट टेस्ट कहलाएगा अर्थात O2 एवं O4। तालिका 8 में दोनों समूह के पोस्ट टेस्ट प्राप्तांकों को दिखलाया गया है। पोस्ट टेस्ट प्राप्तांक प्राप्त कर लेने के बाद प्रयोगकर्ता प्रत्येक प्रयोज्य का लाभ प्राप्तांक केन स्कोर ज्ञात करके उसका टी परीक्षण टी टेस्ट द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण करेगा और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लाभ प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए पोस्ट टेस्ट प्राप्तांक पोस्ट टेस्ट स्कोर में से प्री टेस्ट प्राप्तांक को घटा लिया जाएगा। तालिका 9 में प्रत्येक प्रयोज्य का लाभ प्राप्तांक को दिखलाया गया है। पैराग्राफ चेंज, तालिका 9। 4 यादृच्छिकृत एक वर्गीय एनोवा डिजाइन रैंडमाइज्ड वन वे एनोवा डिजाइन। इस डिजाइन में जो प्रयोजन संचालित किए जाते हैं इनमें से तीन या तीन से अधिक समूह होते हैं, परंतु इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है तथा इसका सांख्यिकीय विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए विशेष सांख्यिकीय परीक्षण अर्थात एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस डिजाइन का संकेतन नोटेशन इस प्रकार किया जाता है। संकेतन से यह स्पष्ट है कि उपयुक्त डिजाइन में तीन समूह हैं जिनका चयन सिलेक्शन जीव संख्या पॉपुलेशन से यादृच्छिक ढंग से रैंडमली किया जाता है। समूह की संख्या तीन से अधिक भी हो सकती है। तीनों समूह को विवेचन ट्रीटमेंट यानी एक्स अलग से अलग दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे अध्ययन में डिपेंडेंट वेरिएबल के तीन मान वैल्यूज होंगे और प्रत्येक मान के अंतर्गत एक एक समूह कार्यरत रहेगा। प्रयोज्यों को इन तीन समूहों में आवंटन असाइनमेंट यादृच्छिक ढंग से रैंडमली किया जाएगा। इसके बाद तीन समूहों की माप डिपेंडेंट वेरिएबल पर की जाएगी O1, O2 तथा O3। इसके बाद इन तीन समूहों का डिपेंडेंट वेरिएबल पर के प्राप्तांक को स्कोर्स का माध्य ज्ञात कर उसकी सार्थकता की जांच एफ टेस्ट द्वारा की जाएगी। परफेक्ट चेंज एक उदाहरण मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता तीन वीडियो से गणित मैथमेटिक्स पढ़ाए जाने का गणितीय कौशल मैथमेटिकल स्किल पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में विधि मेथड IV है जिसके मान लिया जाए कि तीन मान हैं भाषण विधि लेक्चर मेथड परिचर्चा विधि डिस्कशन मेथड तथा प्रदर्शन विधि। इस अध्ययन के लिए प्रयोगकर्ता 100 छात्रों में से 30 छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से करता है जिसे पुनः वह तीन समूहों में यादृच्छिक ढंग से आवंटित कर देता है। इस तरह से तीन समूह अर्थात समूह ए समूह बी तथा समूह सी तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक समूह में प्रयोज्यों की संख्या 10-10 होगी। प्रयोगकर्ता पुनः यादृच्छिक ढंग से जैसे सिक्का उछाल करके यह निश्चित कर लेगा कि कौन समूह को किस विधि द्वारा गणित पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक समूह को 6 दिनों तक एक खास विधि द्वारा गणित पढ़ाकर उसके 2 दिनों के बाद तीनों समूह का गणितीय कौशल मैथमेटिकल स्किल्स की माप की जाएगी। इस तरह प्रयोगकर्ता को प्राप्तांकों के तीन सेट मिल जाएंगे। तालिका 10 में प्राप्तांकों के इन तीनों सेट को दिखलाया गया है। तालिका 10 समूह ए बी तथा सी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद का गणितीय कौशल की माप पर मिले प्राप्तांक। पैराग्राफ चेंज इन आंकड़ों से एफ प्रशिक्षण याद करके यह आसानी से जाना जा सकता है कि गणितीय कौशल पर इन तीनों विधियों का प्रभाव सार्थक पड़ रहा है या नहीं। पैराग्राफ चेंज 5 यादृच्छिकृत ब्लैक्ट एक मार्गीय एनोवा डिजाइन रैंडमाइज्ड ब्लॉक वन वे एनोवा डिजाइन। यादृच्छिकृत ब्लॉक्ड एक मार्गीय एनोवा डिजाइन भी यादृच्छिकृत एक वर्ग मार्गीय एनोवा डिजाइन के समान ही बहु समूह डिजाइन है। अंतर इतना ही है कि यादृच्छिकृत एक मार्गीय एनोवा डिजाइन में बहिरंग चरों का नियंत्रण मात्र यादृच्छिकरण द्वारा किया जाता है, जबकि यादृच्छिकृत ब्लॉक्ड एक मार्गीय एनोवा डिजाइन में इन चरों का नियंत्रण यादृच्छिकरण तथा स्थिरता दोनों द्वारा की जाती है। इस डिजाइन की मूल विशेषता यह है कि इसमें प्रयोज्यों को जीव संख्या से यादृच्छिक ढंग से चयन करके उसे उस बहिरंग चर पर समान बना लिया जाता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को सीधे प्रभावित कर सकता है। इन प्रक्रिया को ब्लॉकिंग की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद फिर प्रयोज्यों को विभिन्न प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में यादृच्छिक ढंग से आवंटित कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह को विवेचन यानी एक्स दिया जाता है और इसके बाद उस पर एक्स के प्रभाव का मापन मेजरमेंट अर्थात O1, O2 तथा O3 कर लिया जाता है। इस डिज़ाइन का संकेतन नोटेशन इस प्रकार किया जाता है। समूह डिज़ाइन से स्पष्ट है कि इसमें तीन समूहों में दिए गए एक्स तथा ओ दिखलाया गया है। समूहों की संख्या तीन से अधिक हो सकती है। बाद में एफ परीक्षण द्वारा यह ज्ञात कर लिया जाता है कि O1, O2 तथा O वन के बीच सार्थक अंतर है या नहीं, इसी के अनुसार प्रयोगकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तरफ चेंज, एक उदाहरण मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता, जैसा कि ठीक उसके पहले डिजाइन में उदाहरण के रूप में बतलाया गया है, तीन अलग अलग विधियों से गणित पढ़ाए जाने का गणितीय कौशल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में विधि, मेथड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा इसके तीन मान वैल्यूज बतलाए गए थे। भाषण विधि, लेक्चर मेथड, परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड तथा प्रदर्शन विधि, डेमोंस्ट्रेशन मेथड। गणितीय कौशलता इस अध्ययन में डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्रयोगकर्ता को यहाँ यह विश्वास हो जाता है कि इस अध्ययन में प्रयोज्यों का सामाजिक आर्थिक स्तर एक महत्वपूर्ण बहिरंग यह हो सकता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है। अतः वह तीनों सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च मध्य तथा निम्न के अनुसार प्रयोज्यों का यादृच्छिक ढंग से रैंडमली जीव संख्या पॉपुलेशन से चयन सिलेक्शन करेगा। यदि उन्होंने 30 प्रयोज्यों का चयन करने को सोच रखा है तो वह प्रत्येक सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रयोज्यों का चयन यादृच्छिक ढंग से रैंडमली उसकी सामान्य विवरण के अनुसार करेगा। तालिका 11 में प्रत्येक सामाजिक आर्थिक स्तर से चुने गए प्रयोज्यों की संख्या को दिखलाया गया है। पैराग्राफ चेंज, इस तरह से प्रत्येक समूह में 10-10 प्रयोज्य हो जाएंगे। पुनः सिक्का उछाल कर प्रयोगकर्ता यह निर्णय कर लेगा कि कौन समूह किस विधि से पढ़ा जाएगा। थोड़ी देर के बाद, देर के लिए मान लिया जाए कि इस प्रक्रिया के बाद प्रयोगकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समूह ए भाषण विधि द्वारा, समूह बी परिचर्चा विधि द्वारा तथा समूह सी प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक समूह को संबंधित विधियों द्वारा समान ढंग से प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके 2 दिन बीतने के प्रत्येक समूह की गणितीय कौशलता की क्षमता की जाँच की जाएगी। O1, O2 तथा O3 तीन समूह के प्राप्तांक को इस कोर्स के अंतर की सार्थकता की जाँच F परीक्षण द्वारा करके प्रयोगकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इन परीक्षणों के परिणाम के आधार पर वह यह निश्चित रूप से कह पाएगा कि इन विधियों का प्रभाव गणितीय कौशलता पर पड़ रहा है या नहीं। 6, यादृच्छिक कारक गुणित डिज़ाइन, रैंडमाइज फैक्टोरियल डिज़ाइन। सभी प्रयोगकर्ता डिज़ाइनों में कारक गुणित डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन अधिक जटिल माना गया है। कारक गुणित डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जहाँ प्रयोगकर्ता एक साथ ही 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रयोगों का अध्ययन करना चाहता है, क्योंकि इन चरों के प्रभाव का अलग अलग अध्ययन करने का समय उसके पास नहीं होता है या वह लंबे समय तक किसी कारण से इंतज़ार नहीं कर सकता है। तथा साथ ही साथ वह इन चरों के अंतर्क्रिया इंटरैक्शन द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करना चाहता है। जब किसी डिज़ाइन में 2 IVAs का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे द्विकारक कारक गुणित डिज़ाइन, 2-factor factorial डिज़ाइन कहा जाता है। परंतु जब डिज़ाइन में 3 IVAs का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे त्रिकारक गुणित डिज़ाइन, 3-factor factorial डिज़ाइन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज, कारक गुणित डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन 2 विमाओं डायमेंशंस के आधार पर परिवर्तित होते पाए जाते हैं। IV की संख्या नंबर ऑफ IV1 तथा प्रत्येक IV के स्तर की संख्या नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ईच IV। यदि किसी प्रयोग में 2 IV हैं और दोनों के 2 स्तर लेवल्स हैं तो उसे 2×2 कारक गुणित डिज़ाइन कहा जाता है। उसी तरह यदि दोनों IV के 3-3 स्तर हैं तो उसे 3×3 कारक गुणित डिज़ाइन कहा जाता है। परंतु यदि एक IV का स्तर 3 तथा दूसरे का 2 है उसे 3×2 कारक गुणित डिज़ाइन कहा जाता है। उसी तरह से यदि किसी प्रयोग में 3 IV हैं और एक IV के 3 स्तर, दूसरा IV के 2 स्तर तथा तीसरा IV के 2 स्तर हैं तो उसे 3×2 कारक गुणित डिज़ाइन कहा जाता है। कारक गुणित डिज़ाइन का प्रकार चाहे जो भी हो, उसके द्वारा बहिरंग चर एक्सट्रानियस वेरिएबल का नियंत्रण उस चर को एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बदल कर दिया जाता है। ग्राफ चेंज, यादृच्छिक कारक गुणित रैंडमाइज फैक्टोरियल डिज़ाइन वह डिज़ाइन है जिसमें प्रयोगकर्ता कम से कम 2 IV के प्रभाव का एक साथ अध्ययन करता है। इस तरह के डिज़ाइन में प्रत्येक ऐसे IV के कम से कम 2 स्तर होते हैं इस तरह से सबसे छोटा यादृच्छिक कारक गुणित डिजाइन 2x2 का होता है, जिसमें प्रयोगकर्ता प्रयोज्यों का प्रारंभिक चयन जीव संख्या पॉपुलेशन से यादृच्छिक ढंग से रैंडमली करता है। इसके बाद प्रयोज्यों को विभिन्न प्रयोगात्मक समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह में विवेचन ट्रीटमेंट यानी एक्स देती है और उसका मापन डीवी पर कर लेता है। नीचे एक ऐसे ही कारक गुण डिजाइन का संकेतन किया जा रहा है, जिसमें से दो स्वतंत्र चर हैं ए तथा बी। ए स्वतंत्र चर के तीन स्तर है A1, A2 तथा A3 एवं बी स्वतंत्र चर के दो स्तर है B1 तथा B2। पैराग चेंज उपयुक्त कारक गुण डिजाइन 3x2 का है। स्पष्ट है कि इसमें 6 प्रयोगात्मक अवस्थाएं हैं और प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था में एक एक समूह कार्यरत होगा। पैराग्राफ चेंज एक उदाहरण। मान लिया जाए कि कोई प्रयोगकर्ता वह अध्ययन करना चाहता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कार्यात्मक क्षमता वर्क एफिशिएंसी पर कमरा के ताप टेम्परेचर तथा आवाज़ वॉइस का क्या प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि इस अध्ययन में ताप तथा आवाज़ दो IV हैं। मान लिया जाए कि ताप टेम्परेचर यहाँ A एवं आवाज़ वॉइस B है, कार्य क्षमता यहाँ DV है, जिसे प्रयोगकर्ता एक प्रश्नावली क्वेश्चनेयर के माध्यम से मापने का निश्चय करता है। थोड़े देर के लिए मान लिया जाए कि वह ताप के तीन स्तर उच्चतम ताप A1, मध्यम ताप A2 तथा निम्न ताप A3 को चुनता है और उसी तरह आवाज़ वॉइस के भी वह दो स्तर को अर्थात अधिक आवाज़ हाई वॉइस एवं कम आवाज़ लो वॉइस चुनता है। यहाँ अधिक आवाज़ को B1 तथा कम आवाज़ की अवस्था को B2 कहा जाता है। वह एक ही यौन सेक्स के 100 मजदूरों में 60 मजदूरों को यादृच्छिक रूप से मान लिया जाता है जाए चयन करता है। अब वह 60 मजदूरों को 6 समूहों में यादृच्छिक ढंग से आवंटित रैंडमली असाइन कर देगा और पुनः यादृच्छिक ढंग से ही जैसे सिक्का उछाल करके यह निर्णय करेगा कि कौन समूह A1, B1 अवस्था अर्थात उच्च ताप एवं अधिक आवाज की अवस्था में कार्य करेगा, कौन समूह A1, B2 अर्थात उच्च तापमान एवं कम अवस्था की अवस्था में कार्य करेगा और इसी तरह बाकी 4 समूहों को बाकी 4 प्रयोगात्मक अवस्थाओं में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक समूह संबंधित अवस्था में एक खास समय जैसे 2 घंटा के लिए समान ढंग का कार्य करेगा। इसके 1 घंटा बीतने के बाद प्रत्येक समूह के कार्य क्षमता की माप प्रश्नावली विधि से की जाएगी। इस तरह से प्रत्येक अवस्था में 10-10 प्राप्तांक, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में 10-10 प्रयोज्य थे, प्राप्त होंगे और इन प्राप्तांकों के आधार पर F परीक्षण ज्ञात करके प्रयोगकर्ता निम्नांकित निष्कर्षों पर पहुँच सकता है। 1. ताप का प्रभाव कार्यक्षमता पर सार्थक पड़ता है या नहीं। 2. आवाज़ का प्रभाव कार्यक्षमता पर सार्थक पड़ता है या नहीं। 3. ताप एवं आवाज़ ताप x आवाज़ एक साथ मिलकर कार्यक्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव डाल पाते हैं या नहीं। इस तीसरे तरह के प्रभाव को अंतःक्रिया प्रभाव इंटरैक्शन इफेक्ट की संज्ञा दी जाती है।